الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا بچہ تنہائی پسند ہے، اکیلا بیٹھا رہتا ہے. میرا بچہ بہت اگریسو ہے، سب کو مارتا ہے، جھگڑتا ہے، مار دھاڑ کرتا ہے. اس کا ہم نے خود سے سمجھا کے دیکھا، اس کو مارا، پریشرائز کیا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. یہ وہ گفتگو ہے جو ہر دوسرے تیسرے گھر میں آپ کو نظر آئے گی. بچے کا رویہ، چائلڈ سائیکالوجی. اور آج مدنی چینل کے سلسلے میں ہمارا موضوع بھی یہی ہے، چائلڈ سائیکالوجی. وٹ از دا امپورٹنس آف سائیکالوجی، رول آف سائیکالوجی ان دا لائف آف اے چائلڈ. بچے کی نفسیات یہ کیا چیز ہے، کیا اس کی اہمیت ہے؟ اور اگر اس کی اہمیت ہے تو اس کو نظر انداز کرنے سے بچے کی صحت پر کیا مسئلہ بن رہا ہے، بچے کی صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو الیبوریٹلی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل اور ڈاکٹر اسامہ، دونوں میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ یہ شامل رہیں گے. ڈاکٹر صاحب، فرسٹ آف آل وٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس از وٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیلتھ، صحت کی تعریف کیا ہے؟
ہیلتھ از ڈیفائنڈ ایز اے اسٹیٹ آف بینگ فزیکل، مینٹلی اینڈ سوشلی فٹ، ناٹ جسٹ دا ایبسنس آف ڈیزیز اور النس. یعنی کہ ایک انسان، اس کا فزیکلی بھی فٹ ہونا، مینٹلی بھی وہ فٹ ہو اور سوشلی بھی فٹ ہو.
یعنی فزیکل سے مراد اس کی جسم کی کیفیت وہ ٹھیک ہو، مینٹلی ذہنی طور پہ، اور سوشلی جو دوسروں کے ساتھ اس کا رکھ رکھاؤ، برتاؤ، انٹریکشن ہے، وہ ٹھیک ہونا چاہیے.
جی، صرف بظاہر جو ہماری فزیکل جو بیماریاں ہیں جس میں ہمارا بدن جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، ان کو تو ہم عام طور پہ ڈیزیز سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہیلدی نہیں ہے. لیکن جو ہماری سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں وہ بھی ہماری زندگی کو اس حد تک متاثر کر سکتی ہیں کہ ایک انسان، اس کا رہن سہن، اس کا کام کاج، اس کی زندگی کے جو معمولات ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی مطلب ہیلتھ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے.
ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کریں گے، دا ڈیفینیشن آف ہیلتھ اینڈ دین مینٹل ہیلتھ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یہ ہے سبحان بھائی کہ مینٹل ہیلتھ تو از اے پارٹ آف اوور آل ہیلتھ. تو جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈیفینیشن بتائی ہے جس پہ موسٹ آف دی کمیونٹی آف میڈیسن اور ہم لوگ ایگریڈ ہیں، وہ یہی ہے کہ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ہیلتھ ہونی چاہیے اور اٹ شوڈ ناٹ بی دی ایبسنس آف ڈیزیز. ادر وائز اس میں یہ ہے کہ فزیکل ہیلتھ تو بندہ ڈائگنوز کر سکتا ہے ایزیلی وتھ ٹیسٹ، یا اس کی جسمانی کیفیات میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اس کو ڈائگنوز کرنا، اٹس اے ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ جاب. بچوں میں اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ابھی وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد اور سوشل انوائرمنٹ سے وہ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو ہم فوراً سے ان کو بعض دفعہ لیبل لگا لیتے ہیں کہ یہ تو اس کا آئی کیو بڑا تھوڑا ہے، یہ اس کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. تو ہمیں امیجیٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ریہرسل کے تھرو اور ریپیٹیشن کے تھرو بار بار.
ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جو بات بتائی، ڈاکٹر جمیل یا ڈاکٹر اسامہ نے، وہ یہی ہے کہ جو فزیکل النس ہے، نزلہ، زکام، بخار وغیرہ، نشانیاں اس کی نمودار ہو جاتی ہیں جسم پہ، یا اس کے ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ ریڈلی اویلیبل ہیں، آپ جائیں ٹیسٹ کروائیں، کچھ دیر میں رپورٹ آ جائے گی، آپ کو پتا چل جائے گا. لیکن مینٹل ہیلتھ، ذہنی کیفیت، اس کو بھانپنا خاص طور پہ بچوں میں وہ کچھ مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی پراپرلی اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، دے آر ان دا پروسیس آف لرننگ. تو مینٹل ہیلتھ بچوں کے اندر، سب سے پہلی بات کہ بچے کے اپنے سوچنے کا انداز کیا ہے، और बड़े और छोटे बच्चे में फर्क क्या है ज़हनी सलाहियत में, और दूसरा एक बच्चे और दूसरे बच्चे की ज़हनी सलाहियत में क्या फर्क है। नॉर्मल माइलस्टोन्स हम डिस्कस करते हैं कुछ, और उसके बाद फिर हम डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। माइलस्टोन से मुराद मदनी चैनल के नाजरीन संगे मील है। संगे मील से मुराद ये कि इतनी उम्र में बाई डेफिनेशन ऑफ बुक इस बच्चे को ये कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे 6 माह में बच्चा बैठना सीखेगा, 8 माह में बगैर सहारे के बैठेगा, 6 से 8 माह में चीजों को मुंह में डालना शुरू करेगा, 6 से 8 माह में वो रिकग्नाइज करेगा, पहचानेगा और अपनी साउंड में कम्युनिकेट करेगा, जो उसकी जो उसको वो जुबान समझ रहा है। हम उसको कहेंगे बेबलिंग कर रहा है, आ बा कर रहा है, लेकिन वो अपने लिहाज से कम्युनिकेट करना चाह रहा होगा, राबता करना चाह रहा होगा। 9 माह में वो इतना समझदार हो जाएगा कि वो अजनबी को देख के घबरा जाएगा, दिस इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स। और 6 से 8 माह में उसकी पामर ग्रिप होगी, यानी वो हथेली से चीजों को पकड़ेगा, 6 से 9 माह में पिंसर ग्रिप यानी फिंगर ग्रिप के साथ वो चीजों को पकड़ेगा, 8 से 10 माह में क्रॉलिंग करेगा, 2 से 3 माह में बच्चा अपनी नेक होल्ड करता है यानी गर्दन को संभालता है, और 2 से 3 माह में ही बच्चा अपनी मदर से कम्युनिकेट करता है या जो प्राइमरी केयर गिवर जो भी उसका है उसके साथ वो स्माइल पास करेगा, कम्युनिकेट करेगा, उसको देखेगा आंखों में, विजन और रिकॉग्निशन होती है। और पैदा होते साथ ही कुछ रिस्पॉन्सेज हैं, वो आवाजें सुन लेता है, ऊंची आवाज खास तौर पे, और इससे पता चलता है कि उसकी सेंस इंटैक्ट है कि नहीं। 1 साल का होगा तो 1 मीनिंगफुल वर्ड बोलेगा, 1 समझ में आने वाला लफ्ज जैसे बाबा मामा मम्मम, 1 वर्ड बोलेगा। 2 साल का होगा तो 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बोलेगा, मैं जाना अब्बू आओ। 3 साल का होगा तो 3 मीनिंगफुल वर्ड्स बोलेगा। और फिर इसी ग्रोथ प्रोसेस में पेरेंट्स की वो पैरोडी करेगा, उनका पीछा करेगा, उनको फॉलो करेगा, अपनी बड़ी उम्र के जो बहन भाई हैं उनकी नकल उतारेगा, और यूं ये चलता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमने माइलस्टोन्स बच्चों के डिस्कस किए, आप तो बिलखसूस बच्चों के ही डॉक्टर हैं, इस बारे में आप हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएं, कुछ बताएं ये माइलस्टोन्स क्या हैं जो हमने डिस्कस किया, और इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें।
जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त ना तो वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है, जिस वक्त जिस दिन वो पैदा हुआ फर्स्ट डे की मैं बात कर रहा हूँ, ना वो अपने गर्दन को संभाल पा रहा है, ना वो उठ के बैठ सकता है, ना वो चल सकता है। सिर्फ ये है कि जब उसे भूख लगेगी तो वो रोएगा, और अगर आप उसके मुंह में कोई चीज डालेंगे तो वो उसको चूसेगा, जो एक नेचुरल एक उसके अंदर रिफ्लेक्स है, जिसे हम सकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, कि उसके मुंह में कोई चीज डालेंगे तो उसको चूसेगा। अब यहां से लेकर एक एडल्ट होने तक, जवान होने तक, एक जवान जो है वो चलता फिरता है, बातें करता है, खुद खाता पीता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान में ग्रेजुअली बच्चा ये सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अचीव करता है, इन्हें माइलस्टोन्स कहते हैं।
पैदाइश के दिन से लेके एडल्टहुड तक जो वो मंजिलें तय कर रहा है, दिस इज नोन एज माइलस्टोन्स,
दीज आर कॉल्ड माइलस्टोन्स। और इनकी बच्चे की हेल्थ के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत है। जो बच्चा हेल्दी है वो अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो है, यानी कि ये जो सीढ़ी है वो चढ़ रहा है, जो उसकी ग्रोथ हो रही है, वो सारे के सारे अपने जो मुकर्रा वक्त है, जो मुकर्रा वक्त की एक रेंज है कि इतने महीने में ये करेगा, जैसे आपने डिटेल से भी बता दिया, उतने उस के हवाले से वो तय करता जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा, या उसने जो पहले माइलस्टोन्स अचीव कर लिए थे अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता जा रहा है, पहले उसने चलना शुरू कर दिया था, अब वो चलना छोड़ गया है, आहिस्ता आहिस्ता चलना छोड़ दिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता बैठना भी छोड़ दिया है, पहले माँ के साथ कम्युनिकेट कर रहा था, अब उसने ऐसा से कम्युनिकेट करना भी छोड़ दिया है, या उसने करना शुरू ही नहीं किया, तो ये दोनों चीजें एक इस चीज की तरफ निशानदेही करती हैं कि कोई ना कोई बीमारी बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है।
एक बात आपने ये बताई कि माइलस्टोन अचीव ही नहीं किया उस खास मुद्दत में, जिस तरह 1 साल का था तो उसको एक मीनिंगफुल वर्ड बोलना था, वो नहीं बोल सका। और दूसरी बात आपने बताई कि उसने अचीव कर लिया था, यानी 9 माह से 1.5 साल तक उसने चलना शुरू किया, लेकिन फिर उसने चलना छोड़ दिया, ये दोनों चीजें परेशान कौन है डॉक्टर साहब? ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें इलनेस को वाजे करती हैं, या फिर हमें कुछ वेट करना पड़ेगा अभी उसको बीमार डिक्लेयर करने के लिए?
इसमें ये है कि ज्यादातर जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं वो हमारी आम माओं को भी पता होते हैं, वो अपने माहौल में मोहल्ले में इर्द गिर्द आते जाते फैमिली एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये चीजें सीखी होती हैं।
बहुत से बच्चे उन्होंने बड़े किए
होते हैं, फिर देखा होता है अपने बहन भाइयों के साथ वो पले बड़े होते हैं, उनको यूजली ये पता होते हैं कि इतनी एज में ये हो जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन जो है ना वो बॉडी के प्रोपोर्शन में थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उसने सीखना होता है, उसका इमेच्योर ब्रेन होता है, उसमें तकरीबन 100 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, तो 1 बिलियन तकरीबन 1 अरब के बराबर होता है, तो 100 बिलियन अगर न्यूरॉन है तो उसके दरमियान कनेक्शन अभी बांध रहे होते हैं, तो अभी वो प्रॉपर उनमें कनेक्शन बने नहीं होते। इस तरह समझ लें कि एक ब्लैंक पेपर है जिसके ऊपर आप जो भी लिखेंगे वो उसमें फीड हो जाएगा। अब जो मेच्योर अभी ब्रेन हुआ नहीं होता तो वो इर्द गिर्द जो चीज़ें सीखता है वो इनिशियली अपनी 3 सेंसेस को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। उसमें सबसे पहली जो है उसकी टेस्ट की है, उसकी सूंघने की है, और विजन की है, और सुनने की है। जो विजन और सुनने में है वो ये है कि जो विजन की सेंस है ना वो 1 महीने तक बच्चे की डिवेलप नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि रॉड्स और कोन्स जो पड़े होते हैं आंखों के पीछे वो अभी डिवेलप हो रहे होते हैं, बच्चे की परसेप्शन वो नहीं होती, फिर लेंस जो है वो अभी अकोमोडेट कर रहा होता है, तो सुनने में उसको देखने में सॉरी उसको मसला होता है शुरू में। उसकी जो सुनने की हिस्से ना वो बहुत ज़्यादा होती है। इवन उसके जो बड़े होने पे हमारे जो हाई फ्रीक्वेंसी के रिसेप्टर हैं जो कानों में, वो वक्त के साथ साथ शोर की आवाज़ें सुन सुन के वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। हमें सिर्फ हाई लो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें ज़्यादा क्लियर सुनाई देती हैं, प्रेस बाई क्यूसिस कहते हैं इसको, बच्चों में वो ज़्यादा होती हैं। इसलिए आप हल्का सा भी शोर करेंगे, हल्की सी भी उसको आवाज़ देंगे, आप उसको हल्का सा भी नाम लेके पुकारेंगे कि बेटा, तो फौरन आपकी तरफ मुड़ के देखेगा मुझे किसने बुलाया है, उसको सरगोशी भी इस तरह सुनाई देगी जिस तरह किसी ने उसको बुलाया है। जब 1 माह के बाद उसकी देखने की हिस डिवेलप होना शुरू हो जाती है तो फिर वो देखता है, तो वो अपने एक्सप्लोरेशन को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अगर आप रूटीन की चीज़ करेंगे कि एक गिलास है उसमें आप पानी डालेंगे, वो 1-2 दफ़ा देखेगा, उसका वो सर्कट डिवेलप हो जाएगा, फिर उसको अजीब सा लगेगा कि ये तो वही रूटीन है। लेकिन अगर आप उसी को किसी नए तरीके से करके उसको दिखाएंगे ना, तो उसमें वो जो एक्सप्लोरेशन वाली कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा निखार आएगी।
जो है चखना, सुनना,
और आप देखें कि इस्लाम में जो सबसे प्यारी बात है वो यही है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में अजान कही जाती है। मतलब उसको ये नहीं दिखाया जाता है ये खाना काबा शरीफ की तस्वीर है या मदीना तुल मुनव्वरा की तस्वीर है, उसको कान में पहले अल्लाह अकबर सुनाया जाता है, कि जो सबसे उसकी अच्छी इस वक्त काम काज होती है वो सुनने की,
उसको सुनता भी है,
सुनता भी है।
मजीद डॉक्टर साहब ने जो हमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के हवाले से पहले बताया और फिर इसको हमने क्लियर किया कि ये 4 सेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि बच्चे के अंदर मौजूद होती हैं, और ये माइलस्टोन्स हैं, संगे मील हैं, जो बच्चे के नॉर्मल होने के इंडिकेटर्स भी हैं। थोड़ा डिले अगर हो जाए डॉक्टर साहब, इसके अंदर क्या उसका जाएगा?
अगर
परेशानी होगी इसमें, या उसमें अभी इंतजार कर लें, या फिर उसको फौरन चेक करवाएं?
9 माह का बच्चा जो है ना विदाउट सपोर्ट, बगैर सहारे के बैठ जाता है, क्रॉलिंग भी कर रहा होता है। जब 1 साल का होगा तो सपोर्ट के साथ खड़ा हो जाएगा, किसी चीज को पकड़ेगा, चारपाई को पकड़ के खड़ा हो जाएगा, उसको पकड़ के साथ साथ चलेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर माँ बाप भी थोड़ी सी उसको कोशिश करते हैं, उंगली पकड़ कर चलाते हैं, तो 1.5 साल तक वो चलना भी स्टार्ट कर देता है। कुछ बच्चे 1.25 साल पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा 1.5 साल तक चलना स्टार्ट नहीं करता तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक रेंज है। हाँ, अगर वो 2.5 साल का हो गया और अभी तक उसने चलना स्टार्ट नहीं किया, तो इस सूरत में जो है ना आपको एक डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि अब वो उसकी रेंज से बाहर आ गए। अब तक उसको चलना विदाउट सपोर्ट उसको चलना स्टार्ट कर देना चाहिए था। बल्कि जो आम बच्चे हैं, अगर हम एक एवरेज की देखें, तो 2.5 साल की उम्र तक बच्चा ना सिर्फ चल लेता है बाकायदा, बल्कि सीढ़ियां भी चढ़ लेता है। और एक सीढ़ी के ऊपर वो एक सीढ़ी चढ़ेगा, दूसरा पांव भी रखेगा, फिर अगली सीढ़ी चढ़ेगा, फिर दूसरा पांव ऊपर रखेगा, फिर जब वो 4 साल का हो जाएगा तो फिर एक सीढ़ी पे एक पांव रखेगा, अगली पे दूसरा रखेगा, फिर अगली उससे ऊपर वाली पे पहला पांव, फिर अगली पे, फिर इस तरह इनके एक पांव पे चढ़ेगा। 5 साल का होगा तो वो तो फिर भागेगा, और इवन अपने जो टिप टोज हैं पांव के, यानी के जो तलवे हैं उनके ऊपर वो इस तरह से भाग भी सकता है। मतलब एक रेंज है, उस रेंज को जब वो क्रॉस करेगा उस तब तक वो नहीं उसने अचीव किया, तो फिर इसमें जो है ना हमें डॉक्टर को दिखाना
पड़ेगा,
जरूरत है।
जी डॉक्टर साहब, आपको
इसमें ये है कि ब्रेन की हम अगर कंपोजिशन देखें तो वो बेसिकली जो है वो फैट से बना होता है। उसके सारे जो माइलिन शीथ होती है या न्यूरॉन्स होते हैं उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फैट का होता है। सेकेंड उसमें प्रोटीन्स आ जाती हैं, फिर कुछ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, फिर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पूरे ब्रेन को चलाते हैं अपने अपनी कंट्रीब्यूशन से। तो अगर आप समझते हैं कि आपने वो चीज़ें बच्चे को दी हैं बाद दफा ये होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
की डेफिशिएंसी हो जाती है।
आयरन में भी है लेकिन ज्यादातर वो कैल्शियम जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज में और उनकी हेल्पफुल होता है। और जो अमाइनो एसिड होते हैं वो बेसिकली मुख्तलिफ केमिकल्स बनाते हैं, ग्लूकोज से डोपामीन बनती है और वो सारे रिवार्ड सेंटर में इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप बच्चे को डाइट अच्छी दे रहे हैं जिसमें एक अच्छा फैटी एसिड्स है, खासकर जो ब्रेन के लिए होते हैं वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, और अगर वो ये ज़्यादातर नट्स में होते हैं जो हम अखरोट खाते हैं, मूंगफलियां खाते हैं, इस तरह के जो खुश्क मेवा जाते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं। अगर आप ये अच्छा दे रहे हैं, प्रोटीन वाली अच्छी डाइट ले रहे हैं, माँ अच्छी ले रही है जो फीड के थ्रू जा रही है, उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको दे रहे हैं, प्रोटीन वाली डाइट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ये चीज़ें अचीव नहीं कर रहा तो देर
डिफरेंट। डॉक्टर साहब ये जो आपने नट्स का बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अल सुन्नत का रिसाला है नूर वाला चेहरा, जिसमें आपने बच्चों को कैंडीज छोड़ने और खास तौर पे ड्राई फ्रूट की बहुत तरगीब दिलाई है। आप ये रिसाला हासिल करें इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, इस रिसाले में आपको इसकी बहुत ज्यादा मालूमात मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने डाइट के हवाले से डॉक्टर सुना और अब हम मजीद बच्चे की नफ्सियात के फैक्टर पर आते हैं कि फर्स्ट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ ए चाइल्ड इज व्हाट इज दिस। सबसे पहले इसमें एक चीज है कि कभी कभार कोई बच्चा किसी क्रॉनिक ऐसी बीमारी जो लंबा अरसा चलने वाली है उसमें मुबतला हो जाता है। मिसाल के तौर पे उसको कोई दिल का आर्जा ऐसा है या गुर्दे की कोई बीमारी ऐसी लग गई और अब उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी अरसे तक चलेगा, या उसको डायबिटीज हो गई, वो शुगर का शिकार हो गया बेचारा बच्चा, और अब वो जब बहुत अरसे उसने उस माहौल में रहना है, डॉक्टर उसको वो खास चीज मना कर रहा है कि उसने वो चीज नहीं खानी, जबकि उसके माहौल में उसके सिबलिंग्स, उसके भाई बहन, उसके माँ बाप और घर के दीगर अफराद वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको मीठी चीज खाने से रोका जा रहा है और बाकी सब खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर होगा और इस बच्चे की जो बिल्डमेंट है उसके अंदर मेंटली साइकोलॉजिकली कोई डेफिसिट आ सकता है। अब यहां पर सबसे पहले जो एक टीम की सूरत में उसका साथ देंगे वो लोग उसके पेरेंट्स, एनवायरनमेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, यानी ये तीनों की एक टीम आप समझ लें जो इसको साथ देंगे और इसकी मदद करेंगे। ये मेरे मदनी चैनल के नाजरीन इस टीम को याद रखिएगा, हम अपने पूरे सिलसिले के अंदर इस टीम को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक बच्चा जो किसी नफसियाती मसले का शिकार है, यही टीम जो हमने बताई यानी पेरेंट्स, एनवायरमेंट, उसका माहौल और उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी उसका डॉक्टर, ये मिलकर उस बच्चे की जो काउंसलिंग करेंगे उसको सोसाइटी के बराबर ला सकते हैं। और दूसरी बात, अगर उसको एस्फिक्सिया यानी पैदाइश के बाद वो नहीं रोया या उस ऑक्सीजन की सप्लाई उसको प्रॉपरली नहीं हुई, इस हालत में भी उसके जो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो भी डॉक्टर साहब ने शेयर किए वो कम रह सकते हैं, वो बच्चा नॉर्मल 100% नहीं है। और यहां पर अगर उससे ये उम्मीद की जाएगी कि ये दूसरे बहन भाइयों की तरह रिजल्ट्स लेकर आएगा, अपने इदारे में अच्छा परफॉर्म करेगा, नंबर क्यों नहीं लेकर आ रहा, ग्रेड्स इसके क्यों नहीं ठीक आ रहे, दूसरों की तरह क्यों नहीं रह रहा, तो ये ख्वाहिशात, ये बातें, ये तवक्कोआत उस बच्चे को मजीद खराब तो कर सकती हैं, ज़हनी तौर पर बीमार कर सकती हैं, ठीक नहीं कर सकती। ये जो दो बातें हमने डिस्कस की, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से इसकी राय लेते हैं। सबसे पहले इन्फ्लुएंसर डॉक्टर साहब, हमने एक टीम की बात की, एनवायरनमेंट, पेरेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और दूसरी हमने बात की ऐसी बीमारी जो लंबे अरसे तक लग जाए, क्रॉनिक डिजीज हो, उस सूरत में बच्चे का वो जो डिजीज है फिजिकल उसकी तो दवाइयां वगैरह सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन उस वजह से जो मेंटल डिस्टर्बेंस उसको हो रही है, और तीसरा एस्फिक्सिया उसको हो गया, उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन सही तरह नहीं पूरे हुए। आमतौर पर हमारे इस्लाम भाई डिस्कस करते हैं कि वो बच्चा स्कूल में उसकी शिकायतें आ रही हैं, टीचर भी शिकायत कर रही है कि ये इतना सही तरह नहीं पढ़ रहा, हमसे कहा जाता है, हम कह देते हैं, उसको मारते भी हैं, समझाते भी हैं, लेकिन वो समझता नहीं है। इन इस बारे में आप क्या इरशाद फरमाएं?
बच्चों के अंदर जो साइकोलॉजिकल डिजीजेज हैं उसमें आपने दो एस्पेक्ट्स का अभी बयान किया। एक आपने ये बताया है कि एक ऐसा बच्चा जिसको कोई फिजिकल डिजीज ऑलरेडी है, उसको कोई बीमारी पहले से है लेकिन वो बहुत लंबा अरसा चलने वाली बीमारी है, जैसे मिसाल के तौर पे शुगर है या किसी को गुर्दों का मसला या दिल का मसला है, उसकी वजह से उसके लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आई हैं उस सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वो बच्चा उस सोसाइटी अपनी सोसाइटी के अंदर पनप नहीं पा रहा। और दूसरा ये है कि एक ऐसा बच्चा जिसको ऐसी तो कोई डिजीज नहीं है मगर इसके बावजूद उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रही हैं, उसके वो अग्रेसिव हो रहा है, वो स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा, वो क्लास में अटेंटिव नहीं हो पा रहा, तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, पहला एस्पेक्ट जो आपने बताया कि क्रॉनिक डिजीज, कोई लंबी चलने वाली बीमारी के साथ जो वो चीजें वाबस्ता हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज टीम है, जिसका आपने जिक्र किया कि एक उसका मेन हेल्थ केयर प्रोवाइडर, दूसरा उसके माँ बाप, फिर एक सोशल वर्कर होता है, हेल्थ केयर वर्कर होता है, फिर एक जो बहुत ही अहम है इसमें वो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट का भी रोल बहुत ज्यादा अहम है, जो बच्चे के साइकेट्रिक इश्यूज को डील करेगा। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को शुगर है, तो जब ब्रेक टाइम होगा उसके क्लास फेलोज जो होंगे वो आइसक्रीम खाएंगे, अब ये तो आइसक्रीम नहीं खा सकता, तो इसके लिए वो एक एम्बैरेसमेंट होगी। एज ऐसी है कि वो क्लास फेलोज सारे वो क्या करेगा, अब क्लास फेलोज जो है वो जिंगर बर्गर खा रहे हैं, अब उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, वो तो इसकी डाइट से मैच नहीं कर रहा, तो इसको एक स्ट्रेस होगा कि मेरे क्लास फेलोज या मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। इसी तरह अब जब ये खाना खाएगा तो खाने से पहले इसको इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा, बच्चों में ज्यादा टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन लगानी पड़ती है, अब उससे क्लास फेलोज नोट करेंगे, वो कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो, अब ये जब बताएगा तो इसको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा,
और फिर करना जो स्विच
फिर करेगा उसका भी होगा। तो इसलिए ऐसे बच्चों को जिनको क्रॉनिक डिजीज है, उनके स्कूल के अंदर उनके जो पेरेंट्स हैं और उसके जो टीचर्स हैं, विद चाइल्ड साइकेट्रिस्ट एक सेशन होता है जिसमें उसके टीचर्स को बताया जाता है कि ये बच्चा, इसकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं। मिसाल के तौर पे जो कुछ मगरबी ममालिक हैं वहां पे तो जिस बच्चे को डायबिटीज है उस स्कूल के अंदर ये लाजमी है कि एक ऐसा कमरा हो, उस बच्चे का ये राइट है कि एक ऐसी जगह हो जहां पर उसको प्राइवेसी हो कि वो खुद जाकर अपने आप को इंसुलिन लगा सके, ताकि उसके क्लास फेलोज इसके बारे में मालूम
मतलब ना हो सके। ये जो हमने ये बात की कि एक टीम वर्क के जरिए उस बच्चे को टैकल करना है, ये बात बहुत जरूरी है
जी। और इस तरह से अगर आप टीम वर्क के साथ करेंगे तो वो बच्चा नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकता है, उसका स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, वो माशरे के अंदर एक बेहतर फर्द के तौर पर सामने आएगा।
डॉक्टर साहब, इस बारे में कुछ इरशाद फरमाएंगे।
इसमें जरूर ओवरऑल जो बच्चा होता है वो यूजुअली मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से ही उसकी ग्रूमिंग होती है और वो अच्छे तरीके से परवरिश पा सकता है। हमें बच्चों को हर पहलू से देखना चाहिए, हर बच्चे को अपना बच्चा देखना चाहिए। बच्चे तो मेहमानों से भी सीख रहे होते हैं, अगर मेहमान कोई आता है तो वो ये देखता है कि मेहमान बिहेव किस तरह करता है। उनका बड़ा रोल मॉडल तो उनके वालदैन होते हैं, अगर वालदैन ये कहेंगे कि बेटा बाहर जाके सच बोला करो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और घर में वो सोया हुआ है, किसी ने आके दस्तक दी है और बच्चे को उन्होंने क्या के भेजा के जाए जी बताएं, बच्चे घर में तो अम्मी अबू है ही नहीं या अबू जी बाहर गए हुए हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा? वो यही सीखेगा कि मेरा रोल मॉडल मुझसे इस तरह की बात कर रहा है तो बड़ा होकर मैं डेफिनेटली उस तरह की बनेगा। तो हर बंदे को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हर बच्चे को अपना बच्चा समझना चाहिए उसकी ग्रोथ में और उसकी कंडीशन में।
हम मजीद इसमें साइकोलॉजिकल इम्बेलेंस में आगे बढ़ते हैं और वो है टू इम्पॉर्टेंट डिजीजेस। ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर। जहनी तौर पे इन दो बीमारियों को हम स्टेप बाय स्टेप डील करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटिज्म एंड देन ADHD। ये दोनों बीमारियां माशरे में बीमारियां समझी नहीं जाती, बल्कि इसको बच्चे का रवैया समझा जाता है और इसको डील करने के लिए अजीब अजीब किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑटिज्म से मुराद ये कैफियत है कि बच्चा अपने एनवायरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं रखता, यानी ऐसा बच्चा जो ऑटिज्म का शिकार है ये खेलता कूदता नहीं है, मोबाइल नहीं पकड़ेगा, सोशल होगा। बच्चे को मोबाइल के करीब नहीं जाना चाहिए, एक खास उम्र ऐसी है जिसमें बच्चा मोबाइल ना यूज करे तो अच्छा है, लेकिन मोबाइल को यूज करना, मोबाइल में कशिश रखना, ये बच्चे का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, ही विल श्योरली गो फॉर इट। आगे उसको मना करना, उस पर चेक्स लगाना, ये सब वालिदैन का और उसके एनवायरमेंट का, उसके टीचर्स का काम है। अब ऐसा बच्चा जिसको ऑटिज्म का वो बच्चा शिकार है वो कलेक्टिव बिहेवियर से दूर होगा। मिसाल के तौर पे फैमिली, पेरेंट्स और फ्रेंड्स, बट ही प्रेफर्स टू लिव अलोन। सब मौजूद हैं, सब खेल रहे हैं, सब एक कुदरती और फितरती रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बच्चों के साथ बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बच्चा अलग से बैठा है, इसका रवैया कुछ मुख्तलिफ है, ये अलग रहना चाहता है। अब ये कैफियत ये ऑटिज्म की हो सकती है। अब ये कितने अरसे तक ये चीज चले तो आप उसको मरीज डिक्लेयर करेंगे, इसके लिए हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के पास आएंगे। पहले हम ADHD पर कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इन दोनों के हवाले से जो रहनुमाई है वो डॉक्टर साहब से लेते हैं। दूसरी जो बीमारी यहां पर ADHD, ये हाइपर एक्टिविटी है, ऐसा बच्चा जो बोल रहा है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ज्यादा उछल कूद रहा है, बहुत ज्यादा दौड़ रहा है, बार बार हाइपर हो जाता है, और ऐसा बच्चा जो है ये मतलब दूसरों से मुख्तलिफ नजर आता है। अब अगर तो हम समझते हैं कि ऐसी कोई चीज हमें अपने बच्चे में नजर आती है और वो चीज क्या बीमारी है या नहीं, बिलखसूस वो चीज कितने अरसे रहे तो इसको बीमारी कहा जाएगा और कितने अरसे ये ना रहे तो ये बीमारी नहीं होगी, इसमें डॉक्टर सामा से पूछते हैं। डॉक्टर सामा बताइएगा कि ऑटिज्म और ADHD, दीज टू डिजीजेज आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सो व्हाट आर द प्री कंडीशंस एंड हाउ वी कैन डायग्नोज दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ईदर ऑटिज्म और ADHD।
सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो ऑटिज्म है और ADHD है, ये अगर देखा जाए तो दोनों एक तरह से एक्सट्रीम्स हैं। कि ऑटिस्टिक जो बच्चा होगा वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, सोशलाइज नहीं होगा, वो कम बोलेगा, वो आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेगा, वो लर्निंग करने की उसको सिखाने की कोशिश करेंगे तो उसमें उसको मुश्किलात दरपेश होंगी, वो जब वो लैंग्वेज उसकी बिल्डअप होनी है, जब उसकी स्पीच उसकी स्टार्ट होनी है, वो माइलस्टोन्स उसके डिले हो जाएंगे। और जबकि दूसरी तरफ हम अगर ADHD को देखते हैं, जिसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि बच्चा जो है उसमें तीन चीजें, एक तो ये कि बच्चा अटेंशन डेफिसिट है, उसको वो अटेंशन नहीं दे पा रहा, वो क्लास में टीचर को उसका यही कंप्लेन करेगा टीचर कि ये बच्चा जो है ना किसी एक चीज पे फोकस ही नहीं कर पाता, मतलब मैं उसको पढ़ा रहा हूँ वो एक चीज के ऊपर फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स फोकस कर पाता है, उसके बाद वो कोई और काम करने लग पड़ता है, एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। फिर एक जगह के ऊपर टिककर बैठना जो है वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो बैठा हुआ है, आप उसे कोई टास्क देते हैं कि आपने ये काम करना है, वो काम करना शुरू करेगा तो बीच में ही उसको छोड़ देगा, कोई और काम करना स्टार्ट कर देगा,
करेगा बार
जी स्विच ओवर करता जाएगा, एक काम को कम्प्लीट नहीं कर पाएगा। फिर उसका बिहेवियर होता है तीसरी चीज के, उसका बिहेवियर जो होगा वो आम बच्चों से हटकर होगा, वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, ज्यादा नाराज हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह लेटर ऑन जब ये बड़ा होगा तो इसका एंटी सोशल, यानी कि माशरे के अंदर जो नेगेटिव जो वर्क्स हैं जिन्हें बुराइयां हम कहते हैं, तो उनकी तरफ इसका जो है ना रुझान पैदा हो जाएगा।
कितनी देर तक ये बातें रहें, अगर के तौर पे अगर एक ये जो बातें आपने बताई, अब वो जो ऑटिज्म है, अगर किसी के घर कोई फौतगी हो जाती है या किसी को कोई फाइनेंशियल सेटबैक मिलता है तो ये तो कॉमन रिस्पॉन्स है, मतलब एक बच्चा है वो 12 साल से कम उम्र है, वो ये तो फील कर लेगा घर में फौतगी हुई है, उसके अंदर भी निशानी आनी शुरू हो जाएगी, तो ये कितने अरसे तक रहे तो इसको बीमारी कहेंगे।
जो ADHD है उसमें 6 मंथ्स है,
सिक्स मंथ
तक अगर ये सारी की सारी उसके अंदर रहती है चीजें तो उसको हम ADHD
अग्रेसिव रहता है, कामों को स्विच ओवर कर रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा
जी। और ऑटिज्म में जैसे आपने बताया कि अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है तो उससे उसके साथ उसका रिलेशनशिप है कि वो सपोज किसी बच्चे की खुदा न खास्ता घर में फौतगी हो गई, वालिदा फौत हो गई, वालिद साहब फौत हो गए, तो फिर वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है तो फिर तो वो नहीं है। लेकिन ऑटिज्म के अंदर मैंने आपको 5-6 चीजें बताई हैं कि एक तो ये कि वो लैंग्वेज उसकी नहीं आ रही, फिर वो आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, फिर वो लर्निंग में उसको मसले हो रहे हैं, वो किसी का साथ सोशलाइज नहीं हो रहा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, वो बोलना चाह रहा लेकिन उसको वो अल्फाज वो नहीं बोलेगा, एक लफ्ज बोल देगा, अल्फाज को जुमले में नहीं ला सकेगा। तो ऐसी चीजें जब ये कुछ महीनों तक ओवर द पीरियड ऑफ मंथ जब ये परसिस्ट करेंगी तो उसको ऑटिज्म कहेंगे। और इन दोनों के इलाज के लिए जो जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा मरीज सबसे पहले तो एक जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं पीडियाट्रिशियंस उनके पास आएगा, लेकिन इन बच्चों को फौरी तौर पे जो है ना किसी चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के साथ भी उनका
यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा लिवरेज और बहुत बड़ा आप जिम्मेदारी दे रहे हैं माँ बाप को कि वो बच्चे के रवैये को देखें और उसमें तरकीब बनाए। यहाँ पर एक गुजारिश मैं आपसे करूंगा कि ऐसा होता है कि पहले उसको ये बीमारी नहीं थी, उसका रवैया ऐसा था, और फिर एकदम उसके घर में ये हादसा ये वाकया हुआ, उस वाक्य के बाद उसको ये बीमारी हो गई, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा नहीं हो सकता, यानी दीज डिजीज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट और नॉट।
जो ऑटिज्म है इसमें तो इसकी अगर हम देखें वजूहात तो इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि जीन्स का भी कुछ इसमें अमल दखल है, कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं उनको भी हमें देखना पड़ता है कहीं वो तो नहीं है, उसके भी हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं। यानी कि ये इसमें कुछ और चीज है, इसमें ऐसे तक अगर इवेंट होगा तो उसके बाद ये हो जाएगा, तो इसमें इस तरह का नहीं है।
अच्छा, ये भी इसका तो नेचुरल बिहेवियर हुआ कि अगर किसी के ऊपर ऐसा इवेंट आता है तो उसके ऊपर अगर ऐसी कैफियत आती है तो उस कैफियत को नेचुरली वियर ऑफ हो जाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता उसको नॉर्मल हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल और बहुत जरूरी है कि अगर बच्चा डिक्लेयर्ड फिट है, दैट बॉय दैट गर्ल दैट चाइल्ड इज डिक्लेयर्ड फिट, ये बच्चे ने सारे माइलस्टोन भी तय किए एक साल में दो माह में जो उसने करने थे, और अब उसकी जहनी सलाहियत में फर्क क्यों है? एक ही घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, एक बच्चा बहुत आगे निकल जाता है हर चीज में, एक बच्चा उतना आगे नहीं निकल सकता या नहीं निकल पा रहा। पेरेंट्स दे आर क्वेश्चनिंग द टीचर, टीचर ही इज क्वेश्चनिंग द पेरेंट्स, दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करते रहते भी क्या वजह है क्या वजह है। तो पहले एक चीज इसमें याद रखिए, इंटरेस्ट आर डिफरेंट, दिलचस्पियां मुख्तलिफ होती हैं, जहनी कैपेबिलिटीज मुख्तलिफ हो सकती हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसमें सख्ती का, खास तौर पर प्रेशराइज करने का और हैमरिंग का 24/7 उस बच्चे के ऊपर, वो एक डिजीज का शिकार है, उसको पता नहीं चल रहा आप उसको क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, गुस्सा किया जा रहा है, डांटा जा रहा है और बाद सूरतों में उसको मारा जा रहा है। ये चीजें उसकी इस कंडीशन को वर्ष तो कर सकती हैं, यानी बदतरीन सूरत हाल बन सकती है, इस्लाह की तरफ नहीं आ सकती। वालदैन को बच्चों के साथ फ्रेंडली और बहुत अच्छा माहौल देना चाहिए। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस्ड इंटरेस्ट भी होते हैं, आमतौर पे बच्चे के जो एक मिलान होता है, बच्चे की जो दिलचस्पी होती है वो अपने एनवायरनमेंट को देखकर ही बनती है। वो जब पैदा होता है उसके जहन में कोई नक्श तो ऐसा नहीं होता कि उसने ये करना है वो करना है, वो एनवायरनमेंट को देखेगा और सीखेगा। और यहां पर वालिदैन पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ रही है कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाएं। आइए दावत इस्लामी के इस मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए, अपने बच्चों को वाबस्ता कीजिए। दावत इस्लामी का मदनी चैनल हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज देता है, और अगर वालिदैन उन बच्चों के दिलों में उन दरख्शां और अहम हस्तियों की जो आज एक हमारे बुजुर्गाने दीन हैं और इस्लाम की एक ग्लोरिफाइंग पर्सनालिटीज हैं, उनकी मोहब्बत डालेंगे, उनकी अहमियत डालेंगे, उनको पर्सोनिफाई करेंगे, उनका रुझान इस्लाम की तरफ होगा और वो मजीद एक्सप्लोर और मजीद जस्तजू की उनमें लगन पैदा होगी। तो आइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाते हैं। दावत इस्लामी में फैजान मुस्तफ़ा है, फैजान औलिया है, दावत इस्लामी हमें हर तरह से गाइड कर रही है, टोटल सॉल्यूशन है दावत इस्लामी के अंदर। और जब इन बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि ये भी दीनी मामलात में आगे से आगे बढ़ें, औलिया को पढ़ेंगे और उन औलिया के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इल्मे दीन भी सीखेंगे। और इसके लिए दावत इस्लामी हमें पूरा सेटअप देती है, मदरसतुल मदीना जहां पर बच्चे हिफ्ज़ो नाज़रा कुरान की तालीम हासिल कर सकते हैं, यहां पर जामियतुल मदीना है जहां पर दरस निजामी होता है, दारुल मदीना मुकम्मल स्कूलिंग सिस्टम है। आइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक।